ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 12 अक्टूबर 2025 के लिए है। विषय: क्या पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक हैं? स्वर्णपथ योहन्ना: मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरुण इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। मसीह यीशु। उत्तरदायी अध्ययन फिलिप्पियों: जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुले होने को अपने वश में रखने की वास्तु न समझा, वरुण अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। मेरे प्यारो, जिस प्रकार से तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर होने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलिंक संतान बने रहो। पाठ उपदेश बाइबल में से मत्ती: और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती: फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा: बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जिलाओ, कूड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने संतमंत पाया है, संतमंत दो। लूका: फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। फिर वो गलील के कुफरनहूम नगर में गया और सब्बत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वो उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वो आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वो निकल जाती हैं। सो चारों ओर हर जगह उसकी धूम मच गई। वो आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया और शमौन की सास को तप चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर तप को डांटा और वो उस पर से उतर गया और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। लूका: जब वो किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। लूका: वो यरू में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जकई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धानी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। सो यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस जगह और नगर पर आप जाने को था उन्हें दो दो करके अपनी जगह भेजा। और उसने उनसे कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। वो 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने कहा, मैं शैतान को बिजली के नियन स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वास्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मत्ती। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे परिणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। भावतिक समझ के विश्वास और सपने से पूरी तरह से अलग आध्यात्मिक समझ और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभुत्व की चेतना को प्रकट करके जीवन दिव्य है। ये समझ त्रुटि निकालती है और बीमारों को ठीक करती है, और इसके साथ आप अधिकारी के नियम बोल सकते हैं। महान नमूने की तरह मरहम लगाने वाले को बीमारी के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि आत्मा को शारीरिक इंद्रियों के झूठे सबूतों को साबित करने और मृत्यु डर और बीमारी पर अपने दावों को साबित करने के लिए छोड़ देना चाहिए। यीशु ने अपना काम एक ही आत्मा के द्वारा किया। उन्होंने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। जहाँ तक सुसमाचारों से पता चलता है, उन्होंने कभी किसी बीमारी का वर्णन नहीं किया, बल्कि उन्होंने बीमारों को ठीक किया। मानव निर्मित सिद्धांत लुप्त हो रहे हैं, मुसीबत के समय में वो मजबूत नहीं हुए हैं। मसीह शक्ति से राहित, वो कैसे मसीह के सिद्धांतों या अनुग्रह के चमत्कारों का वर्णन कर सकते हैं? मसीही उपचार की संभावना से इनकार मसीही धर्म को उसी तत्व से लौटता है जिसने इसे पहली शताब्दी में दिव्य शक्ति और इसकी आश्चर्यजनक और अपरातम सफलता दी। भावतिक प्रतिरोध पर आध्यात्मिक शक्ति की श्रेष्ठता में विश्वास करने का दिव्य अधिकार है। पीड़ा, पाप, नारनाशन मान्यताएं वास्तविक हैं। जब दिव्य विज्ञान को सर्वभाविक रूप से समझा जाएगा तो उनका मनुष्य पर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य अमर है और दिव्य अधिकार द्वारा जीवित है। मैं यहां अपने पाठकों के लिए दिव्य मन के कानून और पदार्थ और सविचता के कथित कानूनों के बारे में एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, एक ऐसा रूपिक जिसमें क्रिश्चियन साइंस की दलील बीमारों को ठीक करती है। मान लीजिए एक मानसिक मुकदमे की सुनवाई चल रही है, क्योंकि मुकदमों की अदालत में सुनवाई होती है। एक व्यक्ति पर यकृत शिकायत होने का आरोप लगाया जाता है। रोगी बीमार महसूस करता है, रोता है और परीक्षण शुरू होता है। व्यक्तिगत भावनावादी है, नश्वर मनुष्य प्रतिवादी है। मिथ्या विश्वास व्यक्तिगत भावना का वकील है। नश्वर मनुष्य मटीरिया मेडिका, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, सम्मोहन, ईर्ष्या, लालच और कर्तज्ञता ज्यूरी का गठन करते हैं। अदालत कक्ष रुचि रखने वाले दर्शकों से भरा है और न्यायाधीश दवा बेंच पर बैठे हैं। न्यायाधीश दवा उठते हैं और बड़ी गंभीरता से नश्वर मनुष्य की ज्यूरी को संबोधित करते हैं। वो अपराध का विश्लेषण करते हैं, गवाही की समीक्षा करते हैं और विकृत संबंधी शिकायत से संबंधित कानून की व्याख्या करते हैं। उनका निष्कर्ष ये है कि प्रकृति के नियम रोग को हथियारा बनाते हैं। अपने कठोर कर्तव्य का पालन करते हुए माननीय न्यायाधीश दवाई ज्यूरी से आग्रह करते हैं कि वो अपने निर्णय को क्रिश्चियन साइंस के तरीकों ऐसे सुझावों से प्रभावित ना होने दें। ज्यूरी को ऐसे मामलों में केवल नश्वर मनुष्य के विरोध व्यक्तिगत संवेदना के साक्ष्य पर ही विचार करना चाहिए। जैसे जैसे जज आगे बढ़ता है, कैदी बेचैन होता जाता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और उस पर निराशा और मौत का प्रभाव छा जाता है। मामला ज्यूरी को सौंप दिया जाता है, एक संक्षिप्त परामर्श होता है और ज्यूरी प्रथम श्रेणी के विकृत रोग के दोषी का फैसला सुनाती है। दिव्य प्रेम के पंखों पर तेजी से एक घोषणा आती है, निष्पादन बंद करो, कैदी दोषी नहीं है। जेल का कमरा विषता से भर जाता है। कुछ कहते हैं ये कानून और न्याय के विपरीत है। दूसरे लोग कहते हैं मसीह का करुण हमारे कानूनों को तोड़ देता है, आइए हम मसीह का अनुसरण करें। वकील का बयान गंभीर आंखें आशा और जीत के साथ दयालु ऊपर की ओर देखती हैं। फिर क्रिश्चियन साइंस सर्विस ट्रिब्यूनल में अचानक बदल जाता है और बचाव के लिए तर्क खोलता है। बार में कैदी को अनुचित तरीके से सजा सुनाई गई है। उनका मुकदमा एक त्रासदी था और नैतिक रूप से अवैध है। इस मामले में नश्वर मनुष्य को कोई उचित वकील नहीं मिला। तो फिर इस मामले में माननीय न्यायाधीश दवाई का क्या अधिकार था? मैं उनसे बाइबल की भाषा में कह सकता हूं, क्या आप न्याय करने बैठे हैं, कानून के अनुसार और आदेश देते हैं, कानून के विरोध दंड देने का? एकमात्र अधिकार क्षेत्र जिसे कैदी को प्रस्तुत किया जा सकता है वो है सत्य, जीवन और प्रेम। यदि वो इसकी निंदा नहीं करते हैं तो ना तो न्यायाधीश चिकित्सा उसकी निंदा करेगा। और मैं पूछता हूँ कि कैदी को उस स्वतंत्रता के लिए बहाल किया जाना चाहिए जिससे वो अन्याय से वंचित रहे। वकील क्रिश्चियन साइंस फिर सर्वोच्च कानून पुस्तक बाइबल से पढ़ता है, मनुष्य के अधिकारों पर कुछ आरक तपनी करते हुए कि बाइबल ब्लैकस्टोन से बेहतर अधिकार थी। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वो अधिकार रखें। देखो, मैंने तुम्हें सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वास्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहां बचाव पक्ष के वकील ने अपना भाषण समाप्त किया और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एक सौम्य और मौजूद उपस्थिति के साथ सभी कानूनों और सबूतों को समझाने के लिए उनकी कानून पुस्तक बाइबल से समझाया गया है कि कोई भी तथाकथित कानून जो कि असाध्य लेकिन पाप को दंडित करने का कार्य करता है अशाकित और शून्य है। आध्यात्मिक इंद्रियों के न्यायालय ने तुरंत फैसले पर सहमति व्यक्त की और आत्मा के विशाल दृष्टिकों की कक्षा में गूंजना शुरू हो गया, दोषी नहीं, दोषी नहीं। तब कैदी ने पुनर्जीवित मजबूत मुफ्त गुलाब उठाया, हमने देखा क्योंकि उसने अपने वकील क्रिश्चियन साइंस के साथ हाथ मिलाया था, जिससे सारी बेचैनी और दुर्बलता गायब हो गई थी। उसका रूप सीधा और आज्ञाकारी था, उसका चेहरा स्वस्थ और खुशी से भरा था, दिव्य प्रेम ने डर को दूर कर दिया था। नश्वर आदमी अब बीमार नहीं है और जेल में आगे चला, उसके पांव क्या ही सुहाने हैं, उसके जैसा जो शुद्ध समाचार लाता है। दिव्य विज्ञान में जहां प्रार्थनाएं मानसिक होती हैं, वहां सभी ईश्वर का लाभ उठा सकते हैं, जो संकट में अति सहज से सहायक है। प्रेम अपने अनुकूलन और सर्वश्रेष्ठता में निष्कृष और सर्वभावमिक है। ये खुला फवारा है जो कहता है, ओह हर एक जो प्यासा है तुम पानी के पास आओ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है, प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।